स्थितं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति। ब्रह्मजस्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायः कातर्यायुधाम् पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतमिदं तवैवास्मि तवैवास्मि भजामि राधाम् अरविन्दमित्तम् मधुरस्मिताभ्यं वदामि राधाम् करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति। हम लोग जीव गोस्वामी के संबंध में बतला पंडित तुम्हें दूरे का ना बसते बसा जाए आलोचना जत दूरे जाब मरब जहाँ दूरे जाबे मरब ये बुझे रख। तो कल हम लोग जीव गोस्वामी के संबंध में विचार कर रहे, तो उसमें हम लोग संदर्भ के संबंध में बतला रहे हैं, जिसमें तत्व संदर्भ पर मैं थोड़ा सा बतलाया और परमात्मा और भक्ति संदर्भ में परमात्मा और भगवत संदर्भ में बतलाया, थोड़ा सा भक्ति संदर्भ में बतला रहा। भक्ति संदर्भ में उन्होंने वर्णन किया भक्ति एक होने पर भी उसकी उसको तीन भागों में बांट दिया गया। साधक के भक्ति के करने के अधिकार के अनुसार में पहला बतलाया आरोप सिद्धा संग सिद्धा हे स्वरूप सिद्धा। स्वरूप सिद्धा में भी बहुत प्रकार की भक्ति का विचार किया। तो कल मैं आरोप सिद्धा से आरंभ कर रहा था, तो आरोप सिद्धा के संबंध में आप लोगों की क्या धारणा है बतलाइए। तो पंडित जी बतलाओ आरोप सिद्धा भक्ति किसको कहते हैं जानते हो, थोड़ा सा बतलाओ खूब संक्षेप में एक मिनट सूत्र के रूप में बतलाओ। तुम सबसे पीछे आता है और सबसे पीछे बैठता है, तुम भी दूर होने की चेष्टा कर रहा है, अभी बदलाने दूर होने वाले मरेंगे। तुम बतलाओ तुम्हारी धारणा
भगवत परमादि और परमानंद ये थे आरोपसिद्धा भक्ति। जिनको से बात संदर्भ में बोल जे जहाँ सर्वोत्तम भक्ति नये किंतु कर्म कर्मादि आरोप कर्मादि अर्पण करे भक्ति मत सहायक होचे ताकि आरोप सिद्धा भक्ति जैसे यज्ञ
और संग सिद्धा प्रेमानंद संग सिद्धा भक्ति किसको कहें तुम बतलाओ तो देख।
जैसे कोई यज्ञ करते हैं यज्ञ के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारी की जाती है सामग्री लाना है ये सब बनाना ये सब संग सिद्धा यज्ञ करना या साक्षी करते हैं जो साक्षी करते हैं हम शुद्ध भक्ति सर।
देखो साधारण रूप में संक्षेप में समझ उत्तमा भक्ति ही स्वरूप सिद्धा भक्ति है ना? जब अन्याभिलाष दूर कर ज्ञान कर्म योग व्रत होम श्रद्धा संयम सबसे अनावृत भक्ति रहे और आनुकूल्य रूप में कृष्ण का अनुशीलन तन मन वचन के द्वारा और भाव के द्वारा जब निरंतर गुरु वैष्णव के अनुगत्य में करते हैं तो ये स्वरूप सिद्धा भक्ति है। यही श्रवण कीर्तन इत्यादि नौधा चौसठ और फिर पंचधा त्रिधा एकधा एकधा नाम संकीर्तन। किंतु एकधा में ये मत समझ लेना जो अकेले ही नाम संकीर्तन हो रहा है। एकधा होने पर एक नाम संकीर्तन की का महात्म्य तो है, उसमें सबसे श्रेष्ठ है, किंतु भगवत भाव को मन के द्वारा उनकी लीला कथाओं का चिंतन वृंदावन इत्यादि में रहते हुए भगवान की हरि कथा का श्रवण करते हुए और तब नाम कीर्तन, तब वो नाम कीर्तन है। एक में भी केवल ऐसा नहीं निर्विशेषवादी जैसा हरे कृष्ण कर रहे हैं और कोई चीज की जरूरत भावना इत्यादि की जरूरत नहीं, ऐसा मत समझना। जैसे कि वो पहलवानी कर रहा है ना, पहलवानी करता है, पहलवानी करता है मैंने क्या कुश्ती करना ना, किंतु साथ साथ में खाता क्या है, कितना पौष्टिक कहा, प्रतिदिन उसको घी चाहिए, एक पौवा घी चाहिए, बादाम छुआड़ा पिस्ता चाहिए ना, और वैसे ही उसको सब प्रकार की सुविधाएं चाहिए, तब कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, तब पहलवानी होगा। पहलवानी एक तो करता किंतु कितनी बातें इसमें। उसी तरह से कोई भी काम करने के लिए हरिनाम संकीर्तन करने के लिए श्रवण जरूरी है, मन के द्वारा भगवान लीला कथाओं का चिंतन जरूरी है, वैष्णव की सेवा भी जरूरी है, सभी कुछ उसमें प्रसाद सेवा भी जरूर, बिना प्रसाद सेवा के करेगा, इसलिए ये सब रहेगा किंतु मूल रूप में रहेगा नाम संकीर्तन। तो इसको कहते हैं गुरु पदाश्रय से लेकर और अंत में भगवत प्रेम तक, वो सब कुछ इसके अंतर्गत है, ये स्वरूप सिद्धांत। ये स्वरूप सिद्धा भक्ति जब न हो, स्वरूप सिद्धा न हो, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन भगवत चिंतन इत्यादि हरि कथा श्रवण ये सब न हो, लौकिक या पारलौकिक या वैदिक जितने कर्म हैं या ज्ञान इत्यादि, उन लोगों का अर्पण कर देते हैं भगवान, और इसी को भगवान को अर्पण करते हैं ना, इसलिए भगवान से थोड़ा सा संबंध हो जाने के कारण इसको अर्पणा भक्ति अथवा आरोप सिद्धा, समझा, आरोप सिद्धा भक्ति नहीं है ने? जिसमें स्वयं अन्नाभिलाष रहित होकर ज्ञान कर्म इत्यादि सब को छोड़कर केवल गुरु पदाश्रय कर संबंध ज्ञान के सही निरंतर कायम वाक्य और भाव की चेष्टा के द्वारा जब अनुकूल रूप में कृष्ण का अनुशीलन करते हैं तो ये स्वरूप सिद्धा भक्ति हुई। जब यह नहीं है, केवल अपने लौकिक या वैदिक कर्मों का, यहाँ तक कि ये तामसिक राजसिक सात्विक, ये तीन प्रकार की भक्ति होती है, कौन आरोप सिद्धा वाली ना? जब वो सब क्रियाएं अपने कर्म अर्पण इत्यादि जो है भगवान, जब दुष्ट किसी कार्य की साधन के लिए की जाता है तो ये तामसिक भक्ति कहलाती है। जब किसी ऐश्वर्य को धन को और संपत्ति को पाने के लिए वो सब जब अर्पण किया जाता है तब वो राजसिक हो गई। और जब अपने किसी वो वैदिकी जो क्रियाएं हैं वैदिकी और निष्काम रूप में कर रहे हैं तो ये सात्विकी होगी। तो तीन बतलाए तो ना जाने कितने प्रकार की है ये। तो माने मूल रूप में जब कर्मों का ही अर्पण करते हैं अच्छा या बुरा, दुष्कर्म भी भगवान को निवेदन करते हैं और वो भी तीन भावना से कर सकते हैं। अपने कर्मों का हम निवेदन करते हैं भगवान को अर्पण करते हैं, जो कुछ करते हैं जक्रोशी जुहोशी ददासी जत तपस्कते तत्पुरुष मदार्पण, जो कुछ करते हो वो सब भगवान को। बेशी भाव संसार में यही लोग करते हैं और इसी को भक्ति समझते हैं, किंतु है ये आरोप सिद्धा भक्ति, ये भक्ति नहीं है। और संग श्रद्धा किसको कहते हैं, यही जब करते करते हो जाएगा, गुरु वैष्णव का संग हो जाएगा तो उसमें सुधार आ जाएगा, तो जो कुछ करेगा भगवान के लिए करेगा, भगवान के लिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्तु पहृतम स्नामी
प्रयता।
जब वो है जो हम अपने कर्मों का अर्पण करते हैं अच्छा या बुरा भगवान को, क्यों करते हैं? देखो यज्ञ क्या यज्ञपति ना क्या कहते हैं, भगवान क्या है यज्ञपति, यज्ञों के फल को ग्रहण करने वाले। अच्छा ये कर्म जो हम करते हैं ये सचमुच में कर्म कौन कर रहा है? गीता देखो कर्मों का कर्ता कौन है? मैं नहीं, कौन? पूर्व जन्म की प्रवृत्ति, इसमें जीव मिला हुआ प्रकृति के द्वारा भगवान की इच्छा से सब मिल करके तब कर्म होता है। अकेले जीव यदि करता है तो अहंकारी उच्चते वो क्या है श्लोक, प्रकृति के द्वारा बद्ध जी उसके पूर्व संस्कार वर्तमान संस्कार और भगवान अंतर्जामी है ना, बिन के उनका जब तक अनुमति नहीं होगी वो कर नहीं सकता, तो उनका भी ये सब मिलकर के तब कर्म होता है। इसमें मुख्य रूप से भगवान का आदेश न हो इच्छा न हो तो होगा ही नहीं, विघ्न आ जाएगी, तुम हल्ला करो विघ्न। यज्ञ करने गया और वर्षा खूब जोर से हो रही, तुम क्या करेगा? बीच में तुम यज्ञ करने गया कहता है तुमने सब माल लूट दिया, तू क्या करेगा? तुम अस्वस्थ हो गए, क्या करेगा? इसलिए मूल रूप में जो यज्ञ है या कोई कर्म है उसके करने वाले मूल रूप में भगवान को ही जो समझ लेता है और उसके अधीन बाकी को ले लेता है वो कर्म से मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्म करने वाले भी वही और उसका फल ग्रहण करने वाले भी वही, ऐसा समझ करके जो प्रभु को अर्पण कर देता है वो झट कर्म से मुक्त हो जाता है। और इसको ऐसा ना समझ करके अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान को अर्पण कर देता है वो कर्मों का फल पा जाता है, तब उसको भक्ति कहते हैं साधारण रूप में। वही करते 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 एक दिन भगवान के प्रति संबंध हो जाएगा, सदगुरु वैष्णव का संग हो जाएगा और उनके संग से समझ करके तब हम भगवान की प्रीति के लिए करने लग जाएंगे। अभी अर्पण कर रहे, तू अर्पण करने वाला, तू करने वाला ही नहीं तो तू अर्पण करने वाला कौन? एक आदमी मेरे इस करताल को ले लिया और दूसरे को दे रहा है दान, ये मैं दान दे रहा हूं, तो उसका दान हुआ? हमारा रुपया था 100 रुपया, मैंने किसी को दे दिया, बांकेलाल को दे दिया या अजय को दे दिया, ये रखना। और बांके अजय ने क्या किया, कहा जी ये मेरा रुपया है ये दे रहा हूं दान, तो धर्म के बदले अधर्म हो गया ना, हमारा रुपया तुमको देने का अधिकार कहां से? इसलिए जीव जो कुछ अर्पण करता है ये भूल है उसका, जो कुछ है ये भगवान का है, कर्म भी उसका फल भी, और हम उसको दूसरों को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, हरिश्चंद्र दे रहे हैं, ये भूल है उनका थोड़े है, ये तो प्रभु का है। इसलिए प्रभु को जब हम देते हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तब ये अर्पण नहीं हो करके भक्ति हो जाती। अच्छा, संग सिद्धा किसको कहते हैं बताओ? जो भक्ति स्वरूपता नहीं है, अर्थात जो उत्तम भक्ति का जो लक्षण बता है वो भक्ति नहीं है, स्वरूपता भक्ति नहीं है। श्रमण कीर्तन, स्मरण बंदन, पाद सेवन, अर्चन या 64 प्रकार की भक्तियों में से कोई एक भी नहीं है। और भक्ति के परिकर रूप में वो काम करती है, सहायक, परिकर माने होता है सहायक, सहायक के रूप में वो करता है, तो उसको भक्ति ही कहते हैं। जैसे मान लिया कि कोई खोल बजाता है, खोल बजाना कहाँ लिखा है कि भक्ति है? कहीं लिखा गया है खोल बजाना? खोल जो बजाते हैं बाहर में, बाहर में नहीं बजाते हैं वो, खोल बना रहे हैं और थोड़ा सा बजा लेते, तो उनको भक्ति कहेंगे?
बाहर में
कोई भी चीज यदि वो कीर्तन में सहायक होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, है ना? घंटा बजा रहे, अच्छा एक घंटा ले लो, मरे हुए जा रहे हैं, बजाते जाते हैं कि नहीं? वो सब भक्ति नहीं होगा। यदि भक्ति में सहायक होगा तब तो वो उस अंग के रूप में ले लिया जाए। हम लोग जो करते हैं वहां पर ये मृदंग खोल इत्यादि करताल, ये साक्षात भक्ति है, ये अंग नहीं है बल्कि अंग ही है ये सब, इस रूप में हम लोग करते हैं। किंतु जहां पर कोई पेशा कर करके वो सीख रहा, भक्ति से कोई संबंध ही नहीं है, तो भक्ति से उसका कोई संबंध नहीं।
भगवत किसी भक्ति
है। अब यहाँ कह रहे हैं भक्ति स्वरूपता नहीं है, किंतु भक्ति का संग से वो उसको कह देते हैं भक्ति। जैसे जैसे दया करना, जैसे वैष्णव में दया होती है, वैष्णव में दया है तब तक वो भक्ति है, क्योंकि वैष्णव से संग है ना? देखता है कि ये जीव भगवान का नाम नहीं करता, इसको भगवान का नाम किसी प्रकार से भी सुना दो, छल से, बल से, कौशल से, या इसको थोड़ा सा प्रसाद दे दो, ये दया है ना, तो ये दया भक्ति है। तो ये जब दया खिलाने पिलाने, ये तो भक्ति ही शुद्ध, प्रसाद देना, नाम सुनाना, उसको हरि कथा सुनाना, ये तो डायरेक्ट भक्ति स्वरूप सिद्ध है। किंतु जब यह दया भक्ति से संबंधित नहीं, भक्ति नहीं है, जैसे किसी व्यक्ति को हम कोई दान देते हैं, या दया एक गुण है जीवों पर, ऐसे ही हम देखते हैं कि चींटियों को लोग खिला रहे हैं, तो चींटियों को खिलाना भक्ति है कि नहीं है? नहीं है। किंतु भक्ति के, भक्तिमानों के साथ में रहेगा ना, तो दया भक्ति हो जाएगी। संग सिद्धा 64 प्रकार, कितने 60 कितने गुण वैष्णवों के बतलाए हैं?
26
गुणों में कृष्ण ही का शरण अंगी है और बाकी सब अंग है, वो कोई भी भक्ति से संबंधित नहीं। यदि भक्त में वो गुण है तो वो भक्ति ही कहलाते हैं, किंतु वो है संग सिद्धा, मीठी बोली बोलना, या कौन है सब कवि दक्ष मौनि ये सभी प्राधान्य कोई गुण नहीं है, साधारण गुण है, किंतु भक्तों में रहने पर उसको, इसलिए इसको संग सिद्धा कहते हैं। स्वरूप सिद्धा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, साधारण की है। एक सकामा, एक निष्काम। फिर निष्काम भी दो प्रकार की होती है, एक भगवत संबंधी और एक ज्ञान संबंधी, मुक्ति की तरफ में ले जाएगी। भक्ति की तरफ में ले जाने वाली भक्ति भी दो प्रकार की, वैदिक भक्ति और रागानुगा। अब रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति भी पांच प्रकार की, यदि स्वरूप सिद्धा है तो भी पांच प्रकार की, शांत दास सख्य वात्सल्य और मधुर भाव संबंधी। और इनके भी अभी हजारों श्रद्धा से लेकर और महाभाव नहीं भाव प्राप्ति तक, माने आसक्ति तक साधन है, भाव तक साधन है, बस यहां तक स्वरूप शक्ति। वैदिक भक्ति के साधन से हम क्रमशः वैदिक भक्ति का श्रद्धा और श्रद्धा से निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम एक तरह का होगा, वैकुंठीय। और रागानुगा वाली जो है उसमें भी कुछ रामचंद्र भाव और अवतारों का, उसमें भी रागानुगी, भरत इत्यादि का भी राग है और पांडवों का भी राग है, हस्तिनापुर वाले और विष्णु वंशी वाले द्वारका वालों का भी कृष्ण के प्रति रागानुगा भाव है। किंतु उसमें सब समय ऐश्वर्य मिला रहेगा। विशुद्ध कब होगा? जब केवल कैवल्य भाव रहेगा, ब्रज का भाव। और उनमें भी स्वरूप सिद्धा में भी क्रमशः एक से एक करते 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 मधुर भाव, और उस मधुर भाव में भी उसमें जाकर के जीव का स्वरूप, जिसको चैतन्य महाप्रभु देने के लिए ले आए थे, अनर्पित चरण चिरात करुणे आव किरणम कलौ, ये हम लोगों के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ तक स्वरूप सिद्धा। अब चलो हम लोग अब स्वरूप सिद्धा के भक्ति के अंतर्गत हम लोग अभी चल रहे हैं। उस दिन हम लोग अब करीब करीब शेष होने आया है, थोड़े से श्लोक रह गए। बृहद भगवतामृत उस दिन हम लोगों ने पाठ किया था। जदोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखनाभिदितो ओखन मार्जनादो गायन्ति चैन मनोरक्त धियो अश्रुकंठा धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्त जाना। साधक लोगों को भी, चाहे वो गृहस्थ हो त्यागी हो, ये सब काम करने पड़ते हैं जीविका निर्वाह के लिए, उनको कुछ न कुछ जरूर करना पड़ता है। तो जबकि आविष्ट होकर के भक्ति होने लगती है तब वो एक तरह है, जब तक आविष्ट नहीं है तब तक तो वो कर्म करना ही, घर के काम इत्यादि तो करना ही पड़ेगा, क्यों ना उसको भक्ति से अनुगत बना करके उस काम को कर लेना चाहिए। और उसमें साधक को किसी भी स्थिति में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य न रहे, और रहे भी तो भक्ति परक बना दे, जिसमें कहा गया है क्रोध युक्त मात्सर्य युक्त क्रोध न रहे। क्रोध तो जाएगा नहीं सहज ही, क्रोध को बदल दो भक्ति विद्वेषी के ऊपर में बस, और कहीं भी क्रोध मत करो। एक आदमी यदि भगवान का भजन कर रहा है, किसी बात से उससे अमेल हो गई, मतभेद हो गया, क्रोध मत करो। क्रोध यदि हो जाए तो संभाल करके उस क्रोध को दूर करने की चेष्टा करो, ना क्रोध किसी भी हालत में रहो, नहीं तो फिर भयंकर परिणाम हो जाएगा। कभी भी क्रोध आए उसको दमन करने की चेष्टा करो, भक्तों को तो क्रोध ही नहीं होता, क्रोध होगा तो किसके लिए, स्वाभाविक हो जाता है, भगवत देशी जनों के प्रति होता है। भगवत अनुकूल के प्रति कोई थोड़ी सी मान ले कि गलती भी हो गई, कुछ हो गया, तो एक क्षण में आया कुछ हो गया फिर समाप्त, नहीं होना चाहिए, भक्ति का महाविरोधी है। इसलिए हम अपने कार्यों में ऐसा ही करेंगे जैसे कि माथुर रमणिया गोपियों के लिए प्रयोग कर रही, जादो होने वहने में मथलो, सब समय सब कामों में कृष्ण संकीर्तन करते हुए आविष्ट, कीर्तन के द्वारा आविष्ट होना असंभव है, कीर्तन के द्वारा ही आवेश आए, किंतु ऐसे कीर्तन भाव रहित कीर्तन से नहीं। यदि मान लिया कि हम विभावरी शेष कीर्तन कर रहे हैं, उसका अंतिम वो क्या है, जामुना जीवन खेली परायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गावो कृष्ण जस राखो वचन, इसका क्या था? ये वेद शास्त्र भागवत इत्यादि का जूस है, सार है ये। जामुना जीवन माने क्या, कीर्तन तो करते हैं, जामुन जीवन कभी समझा, कब हमारा सौभाग्य है कि मैं गोपी भाव से सिर पर घड़े लेकर जमुना में पानी भरने के लिए जाऊंगी और वहां देखूंगी जी कृष्ण किधर है, और कृष्ण आकर के मेरी डगर रोक देंगे और दोनों में कितनी बातें होंगी। तो जामुन इसको कहते हैं जामुन, कृष्ण का गोपियों के साथ में जमुना के उपवन में कुंजों में जो सब लीलाएं होती हैं उनको कहते हैं जामुन भाव। तो जामुन जीवन के लिपराए, अथवा जामुन के जो जीवन है उस लीलाओं के जो जीवन कौन है, कृष्ण है, और राधा जी को ले लो तो और सुंदर रहेगा, ये जामुन जीवन। केली केली तो अकेले होगी नहीं, दोनों केली परायण, क्या हो गया चली गई, केली परायण मानस चंद्र चकोर, मानस चंद्र चकोर क्या, वो जो अब मानस के चंद्र चकोर चंद्र कृष्ण है और उनका चकोर हमारा जीवन, हमारा ये भाव हो जाए, हम जैसे चकोर चंद्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना चाहते, चाहे जो कुछ मर जाए चाहे जो कुछ हो, चकोर मानस चंद्र चकोर। नाम सुधारस, वो चंद्र से जो सुधा निकलती है उसको चकोर केवल पान करता है और कुछ नहीं, ऐसे मैं मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस, भगवान का जो नाम सुधारस, नाम सुधारस गावो कृष्ण जस, कृष्ण का कौन सा जस गान करेंगे, वृंदावन के जितने उनके लीला चक्र हैं उनका सब गान करेंगे। ओ हवना शाम शाम कोनो लाइट ही नहीं थी, वो थी के तन जो है ना गैस जो तेज है वो थी लाख गुना थी। यदि नाम संकीर्तन भाव पूर्वक और समझ बुझ करके हो तो उसके पदों में कितना रस भरा पड़ा है, भक्ति का भाव भरा पड़ा है, हमारे इन सब लोगों ने भर रखा है, और उसमें शक्ति होती है, हम अपने या दूसरों के बनाए हुए कीर्तनों से महाजनों के जो कीर्तन होते हैं उसमें शक्ति संचरित होता है। मान लें कि मैं अपने भाव को राधा कृष्ण से निवेदन करता हूँ और यदि रघुनाथ दास गोस्वामी के पद्यों का, रूप गोस्वामी के पद्यों का, जैसे हा देवी काकू भर गदगद आद्यवा, ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं और सचमुच हृदय से भावना रही है, यही भाव हमारे अंदर में आ जाए तो वो कृष्ण में जल्दी पहुंच जाएगा, कृष्ण जल्दी समझ लेगा और हमारे ऊपर में कृपा कर देगा, उसमें शक्ति रहती है। इसलिए नाम संकीर्तन के द्वारा चित्त जितना नियुक्त होता है, आविष्ट हो जाता है भावपूर्वक, और किसी चीज से भी निविष्ट नहीं होता। इसलिए गायन्ति चैनम, गायन्ति च एनम, कृष्ण के ही नाम रूप गुण लीला इत्यादि का गायन करते हुए उच्च स्वरों से एकदम गायन करने लगती हैं। कब? झाड़ू देते समय, रसोई बनाते समय, बच्चों को पालन पोषण करते समय, प्रत्येक कार्य में। ऐसे हम लोग भी जितने भी कार्य हैं, गृही हम हैं या त्यागी हैं, जो जो कार्य है उसी समय में भगवान नाम कीर्तन करते हुए यदि करें तो हमारा चित्त कृष्ण में अनुरक्त हो सकता है। इसके व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, ना?
चित्त जाना थे,
उरुक्रम चित्त जाना। दो प्रकार से इसकी व्याख्या, उरुक्रम ही, उरुक्रम का चित्त जिनका ज्ञान है ना, उरुक्रम के चित्त में ये आरूढ़ हुई चढ़ी हुई है, जब ये कीर्तन करके तन्मय हो जाती है तो कृष्ण कहाँ रहते हैं? कृष्ण चिंतन करने लगते हैं अपने भक्तों का, आविष्ट हो जाते हैं। आविष्ट होकर के क्या चिंतन करते हैं, कैसे सुंदर रूप से ये कीर्तन कर रही हैं गोपियां, वो गोपी गीत जयतिते, ये गोपियां कीर्तन कर रही हैं और कृष्ण क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे सुनते हुए जा रहे हैं ना, तो उनके चित्त पर कौन चढ़ा है? गोपियां। गोपियों के चित्त पर तो वो चढ़े हैं और उनके चित्त पर गोपियां आरूढ़ हैं। ओह कितना सुंदर इन लोगों का भाव। इसलिए उरुक्रम का चित्त ही ज्ञान है जिनके लिए, अर्थात सब समय कृष्ण जिनका चिंतन करते हैं ये, अथवा उरुक्रम चित्त जाना। उरुक्रम चित्त जान पर जिनके आरूढ़ हैं कृष्ण ही, सब समय कृष्ण का चिंतन करते 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 उनके चित्त रूपी ज्ञान पर कृष्ण आदि। ये दो अर्थ। ऐसे ही यदि कोई कीर्तन करे तो कृष्ण का, कृष्ण भी उसकी चिंता करते हैं और भक्त भी उन्हीं की चिंता करता है। इसके अतिरिक्त और कोई वासना कामना हम लोगों के अंदर में नहीं आने पावे कभी भी। प्रातः प्रजात व्रजत अविशस्त सायं गोपी गोभी समं कणयतो अश्वनि सम वेणु निर्गत्य तूर्णम अबला पतिभूरि पन्ना पश्यन्ति सस्मित मुखो मुखं सदयावलोकम्। पहले श्लोक में तो इस प्रकार से वर्णन किया, दूसरे श्लोक में पुनः वर्णन कर रहे हैं। माथुर माथुर रमणियां ही कर रही हैं। माथुर प्रेम माने क्या होता है? माथुर प्रेम जब कृष्ण मथुरा में चले आते हैं या द्वारका में चले जाते हैं, उनके विरह में ब्रजवासियों को जो विरह होता है उसको कहते हैं माथुर प्रेम। ऐसा नहीं जो मथुरा का लोगों का कृष्ण में जो अनुराग होता है उसको माथुर प्रेम कहते हैं, ऐसा नहीं, वो उलट जाएगा भाव। हम माथुर प्रेम, विरह कातरा ब्रजवासियों के हम चरणों की धूली होना चाहते हैं, ये इसका तात्पर्य है। वही एकमात्र काम है प्रभुपाद जी की भाषा में। माथुर विरह कातर ब्रजवासियां, ब्रजवासी जो है इनमें सबसे जो अधिक कातर होता है उसके चरण की धूली, वो कहने लगी प्रातः ब्रजात ब्रजता अविशतश्च सायं कृष्ण गाभी समम गोभी समम कणयतो अश्वनि सम्मे वेणुम। कृष्ण जब गोचारण करने के लिए सवेरे में प्रातः ब्रजात ब्रजतः ब्रज से ब्रजतः जब चलते हैं ब्रज से उस समय कैसे चलते हैं, गोभी समम गाय साथ में, कण्य तो अश्वनि सम वेणुम, कण्य तो मैने कमर में और पैरों में नुपुर है, ये कौन हुआ तो किंकिणी, अभी तो बच्चे ही तो है ना, गोपाल है इसलिए वो, और पैरों में नुपुर है। जिस समय कृष्ण रास में थे उनके पैरों में नुपुर होंगे कि नहीं, वो नुपुर थे, इसलिए ब्रज में जब तक रहे तब तक नुपुर रहा, ब्रज से बाहर यदि गए तो नुपुर खोल लिए होंगे। तो कण्य तो अस्य अस्य माने कृष्णस्य, ये सब नुपुर इत्यादि बज रहे हैं, और वेणु निशम्न और उसके साथ में वेणु अत्यंत सुंदर रूप में मानो उनको बुला रही है, गोपियों को क्लिंग इत्यादि शब्द करते हुए निशम्य वेणु, साथ ही साथ में या आविशतश्च सायं, अतः सायं में सायंकाल में ब्रज में प्रवेश जब करते हैं उस समय भी गायों और सखाओं के साथ में जब ब्रज में प्रवेश करते हैं उस समय उनके वही नुपुर और बंसी बजती है। उस समय में निर्गत्य पूर्णम अबला पथिभूर पुण्य, उस समय में ये सब गोपियां घर से निकल जाती हैं, निकलती नहीं है, कोई मान लो बरबस निकाल लेता है, कौन वही दोनों चीजें, और भीतर में उनका रूप दर्शन करने की लालसा, क्या सदय अवलोकन, वो भी सस्मितम सस्मितम सदय अवलोकन, इसको पाने के लिए, और उन निकाल लिया घर से वेणु का शब्द और किंकणी का शब्द, और लोभ है कृष्ण का सदय सुस्मित मुखमंडल दर्शन करने की लालसा, बस झट उनको घर से निकाल लिया। कहते हैं कि वो तूर्णम एक मिनट की देरी नहीं हुई, जहां सुना घर से निकल आई, किंतु कहा निर्गत तूर्णम अबला पथी, पथी मैंने जहां पर पथ में इनको नहीं निकलना चाहिए, पथ में भी इनको निकाल लाई वो वेणु और ये सब, पथ में खड़ी हो गई जिसमें हजारों लाखों सखा हैं और भी लोग हैं, कोई लज्जा फज्जा भी कुछ नहीं रह गई, सबको जलांजलि दे करके पथ में खड़ी हो। पथ में खड़ा होना माने क्या, यदि कोई कृष्ण से प्रीति ना करे ना, क्यों दुकुल को हरण कर लेता है वो, क्या है ना चौराष्टक में
ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानं च दुकुल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्र गन्नं पुरुषं रमान।
दूसरा श्लोक
सिराधिकाय
चौरं, तीसरा तीसरे में अकंचनीकृत पदाश्रितं जः करोति पथि गेहहीनं केनाप्यहो भीषण चौर इद्रिं। कहते ऐसा चोर है कि घर बार सबको जलांजलि दिलवा देता है, और करोति पथि गेहहीनं रास्ते का फकीर बना देता, पथ का फकीर बना देता है, सबको दूर करा देता है, ऐसा ये कृष्ण का बंसी ध्वनि सस्मित मुख इत्यादि है। तो तुलनम अबला यहाँ पर कहा, अबला किस लिए कहा, अबला मैंने स्वतंत्र नहीं है इसलिए अबला, निकल तो गई किंतु घर वाले न हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं अबला, अथवा उनका बल जब बंसी की ध्वनि सुनती हैं और कृष्ण का मुखारविंद दर्शन करने के लिए ललायित हो जाती हैं, उस समय उनका अपना बल बुद्धि कुछ भी नहीं रह जाता है, वो अबला हो जाती है, बल रहित होकर के सर्वस्व मानो उनका छीन लेते हैं कृष्ण, इसलिए अबला। पतिभूर पुण्य, वो पथ की भिखारिणी बन जाती है और भिखारिणी बन करके मानो कृष्ण की तरफ में देखने लग जाती है। क्या देखती है? सस्मित मुखम। और उधर में कृष्ण क्या करते हैं, तब ये अबला है ना, तो अबला के लिए वो कहते हैं सदयावलोकन। कृष्ण वहीं से सदैव अवलोकन कर रहे हैं सब लोगों के प्रति, गोपियों के प्रति। इतना बजा, छह बज गया है। अरे बहुत जोर से बोलना पड़ता है, आज यहीं तक रहो, कीर्तन करो, फिर कल इसकी देख करके व्याख्या करेंगे। वंचा कल्पतरु भ्यश्च कृतार्थः पतितानः कीर्तन धारो कर। चूना कंकड़ में कहाँ चला गया?
राधा रमण हरि गोविंद जय जय।